कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो जरूर जन्नत में दाखिल होगा। सहाबा ने पूछा है रसूलुल्लाह कि इखलास क्या है, तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कलमा पढ़ने वाले को हराम से बचा दे, जो चीज गलत है उससे रोक दे, तो ये कलमे का फायदा है कि आदमी सीधा जन्नत में जाएगा। दिल की दुनिया ठीक है, दिल के रुझान ठीक है, दिल की मान्यताएं सही है, सही रुख पर है। ये कल्ब और दिल के लाइन का दीन है, ये दिल का दीन है कि वो ठीक ठीक चले, सीधा सीधा रहे, अल्लाह के अलावा कोई जगह ना दे, अल्लाह के गैर की तरफ मुतवज्जो ना हो। और जिन चीजों पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यकीन करने को कहा है उन चीजों पर यकीन करें। उसमें एक बुनियादी और बड़ी बात कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन तस्लीम करें, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुल अंबिया वल मुरसलीन, आपके बाद कोई नबी नहीं है। दिल से भी इसको मानना है और अपने अमल से ये बताना है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं, हम आपके उम्मती हैं। हमारा अमल ये कहेगा कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके में कामयाबी समझते हैं और आपके अलावा जितने तरीके हैं उसमें हम नाकामी को यकीन करते हैं, तो जिंदगी के तमाम शोबों में, जैसे कलमे में जो कलमा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाया वही पढ़ा, नमाज वैसी पढ़ने की कोशिश करते हैं जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ के बताई है, ऐसे जिंदगी में जितने शोबे हैं उन तमाम शोबों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को मुकद्दम रखकर जिंदगी गुजारेंगे। खाने पीने में, उठने बैठने में, सोने जागने में, शादी ब्याह में, खुशी गमी में, हर मौके पर आपके दीन में कामयाबी को यकीनी समझेंगे और आपके अलावा के जितने तरीके हैं उसमें नाकामी को यकीनी समझेंगे कि कामयाब अब नहीं हो सकेंगे, कि हमारा रास्ता नहीं है। चाहे दुनिया जाती हो जावे, वो अगर उनको कामयाबी दिख रही हो उनकी आंखों का धोखा है, वो तांबे को या पीतल को सोना समझ रहे, वो चमकने वाली चीजों पर ललचा रहे, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। तो हम चूंकि ईमान रखते, हमारे पास कामयाबी और नाकामी को परखने का आला ईमान है, उस आले से हमें पता चलेगा। ईमानी फरासत जिसको कहते हैं, ईमानी फरासत, ऐसे उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते थे, इत्तकु फरासत अल-मुमिन फइन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाह, कि मोमिन की फरासत से बचो इसलिए कि वो ईमानी फरासत से, ईमान के नूर से देखते हैं, दूर का देखते हैं, चमक दमक पर ललचाते नहीं, वो दूर का देखते हैं, जाहिरी टिपटॉप पर अपनी अपनी जान माल नहीं लगाते, दूर का देखते हैं, नताइज क्या है, अंजाम क्या है इसका। नबियों के काम में से काम है इंजार, तमशीर और इंजार, बशारतें सुनाना और अंजाम कार से आगाह करना, अंजाम बताना, कुफ्र का अंजाम क्या होगा, शिर्क का अंजाम क्या होगा, बेईमानी का अंजाम क्या होगा, झूठ का अंजाम क्या होगा, नमाज छोड़ने का अंजाम क्या होगा, बेहयाई का अंजाम क्या होगा, जिना का अंजाम क्या है, सूद का अंजाम क्या है, दुनिया के बाद आखिरत में क्या मराहिल है, अंजाम क्या है, ये अंबिया का एक काम है। नबियों ने अपने कौमों को अंजामकार से आगाह किया, अल्लाह ने नबियों को बशीर और नजीर बनाकर भेजा। तो ईमान वाला अंजाम से वाकिफ रहता है, बेखबर नहीं होता, बाखबर होता है ईमानी फरासत। जब ईमान की हकीकत अंदर उतरती है तो फरासत ईमानी नसीब होती है, फिर आदमी फाके की जिंदगी पर राजी हो जाएगा, हराम कमाई नहीं करेगा, आदमी कम दुनिया पर राजी हो जाएगा, नाजायज रास्ता इख्तियार नहीं करेगा, आदमी जाहिर में लोगों की नजर में जलील रहना पसंद कर लेगा, कि लोग क्या कहेंगे, किसी पास कुछ नहीं है, फकीर है, इसको पसंद कर लेंगे, लोगों के ताने आदमी सुन लेगा, क्योंकि अंजाम से वाकिफ है, अंजाम से वाकिफ है, लोगों के ताने सुन लेगा, अभी वो हंस रहे हैं लेकिन कल जब नतीजा निकलेगा ना तो सब पछताएंगे, सब पछताएंगे। और और कयामत के मैदान में एक अदालत लगेगी, उसमें आएंगे और कहेंगे वो जिन लोगों के जरिए से वो राह रास्त से हटे थे उनसे मुतालिक बारगाह खुदावंदी में शिकायत करेंगे। फ़क़ालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अज़ल्लूना सबीला, अल्लाह इन्होंने हमको गुमराह किया था जिनको देखकर हम चले थे। अज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाब, या अल्लाह इनको दुगना अज़ाब देना, हम तो फंसे ही फंसे हैं लेकिन इनकी वजह से हम फंसे थे तो इनको डबल अज़ाब देना। दुनिया में जिनकी शह शर्म में जिनके पीछे जाकर आदमी अपने आखिरत बर्बाद करता है, इसलिए अल्लाह ताला ने अंबिया अलैहिस्सलाम को बशीर और नजीर बनाकर भेजा, लोगों को बशारतें सुनाओ, अच्छे कामों के फायदे बता दो, ईमान का, नमाज का, इल्म का, जिक्र का, इकराम का, कुरान की तिलावत का, हुस्न अखलाक का, सिला रहमी का फायदा बता दो। ये सारे फायदे के काम है, उसमें बड़े बड़े नफे हैं, दुनिया में भी उसके मुनाफे, इन सारी चीजों के साथ बरकतें वाबस्ता हैं, इन सारी चीजों के साथ बरकतें, जितने आमाल खैर हैं, चाहे नमाज हो, जिक्र हो, तिलावत कलाम पाक हो, सदका खैरात हो, सिला रहमी हो, सारे खैर के कामों के साथ बरकतें वाबस्ता हैं, बरकत। और बरकत को एक चीज का नाम नहीं है कि वो लोहे की होती है या तांबे की होती है या मट्टी की बरकत होती है, बरकत जो है वो तीन चीजों के जरिए से सही फायदा मिलने का नाम है, तो उन चीजों का सही फायदा पहुंचता है आदमी को, उससे इंसान नफा उठाता है और राहत मिल और उस चीज से राहत मिल जाती है, जरूरतें पूरी हो जाती है और राहतें मयसर हो जाती है। अंबिया अलैहिस्सलाम इन आमाल को लेकर आए, इन्हीं अमलों को जिंदा किया जाएगा तो इंसानियत के मसले हल होंगे, मसाइल के हल के लिए ये रास्ते हैं। दुनिया में लोगों ने अपने अपने हिसाब से सोचा कि मसले क्यों खड़े हुए, जमींदारों ने सोचा कोई जमींदार में साल में एक ही फसल मिलती है तो इसलिए मसले हल नहीं हो रहे हैं, नहर का पानी मिल जाए दो फसल होगी तो मसला हल हो जाएगा, किसी ने सोचा अपना बोर होगा तो हम पानी चलाएंगे तो मसला दो फसलें हो जाएगी मसला हल होगा, ताजिरों ने सोचा कि भाई क्यों मसला नहीं हो रहा है तो वो सोच रहा है कि भाई जो तिजारत कर रहे हैं उसमें प्रॉफिट कम है, वो ऐसी चीज मार्केट से लाए जिसमें नफा ज्यादा हो, उन्होंने वो शुरू किया। मुलाजिमों ने सोचा भाई क्यों कल नहीं हो रहा कि तनख्वाह कम है तो तनख्वाह बढ़ा दी जा रही, पता नहीं कितने पगार पंच बढ़ गए लेकिन मसला अभी तक हल हुआ, मसला हल हुआ। और खेती के लिए दो नहीं तीन फसलें हो गई लेकिन मसला बाकी का बाकी, और तिजारत के लिए प्रॉफिट में बाजे कारोबार 100 पर 100 का नफा आ गया, 100 रुपए की चीज 200 में बेचे लेकिन मसला हल हुआ, बोलो ना भाई मसला हल नहीं हुआ, इसलिए कि मसला लोग अपने अकल से हल करना चाहते हैं। हालांकि अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है, पैदा करने से पहले उनके मसलों का सारा हल जमीन पर उतारा, इंसानों की रोजी रोटी का इंतजाम अल्लाह ने किया, जमीन बनाई, पानी बनाया, उस पर जमीन बिछाई, आसमान बनाया और सारी दुनिया की सारी नेमतें मौजूद करके फिर इंसान को भेजा है, पहले भेजकर बाद में सारी चीजें डेवलप नहीं की, इंसान के आने से पहले अल्लाह ने सारी नेमतों और राहतों का सामान किया है, लेकिन जो असल मुनाफे की चीजें हैं उन तरफ तवज्जो नहीं हुई, इंसान अपनी अकल से सोचने लगा और अकल सबकी बहुत महदूद है, अकल सबकी महदूद, हम समझते हैं बच्चों को समझनी पड़ती, बच्चे कहते हैं कि अब्बा को समझनी पड़ती, पता नहीं किसको नहीं पड़ती, वो दोनों को पता नहीं, बड़े समझते हैं कि छोटों को समझनी पड़ती और छोटे समझते हैं कि बड़ों को नहीं पड़ती, और हकीकत में है कि दोनों को नहीं पड़ती, समझ दोनों को नहीं पड़ती। अल्लाह ताला ने हम नबियों को भेजा, समझ भी दी उनको, सबसे ज्यादा अकल अल्लाह ताला ने नबियों को दी और सबसे ज्यादा और ज्यादा इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अकल दी और आपको इलम भी दिया, अकल भी दी इलम भी दिया, कयामत तक आने वाले लोगों की कामयाबी का राज देकर भेजा, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دنیا خلقت لکم, کہ دنیا تمہارے لیے, مزے کرو اللہ کے حلال سے. اللہ نے جو حلال کیا اس کو کھانا جائز کر دیا, پینا جائز کر دیا. کتنی ساری پینے کی حلال کر دی چیزیں, کتنی ساری چیزیں اللہ نے قسم قسم کی نعمتیں کھانے کو دی, لیکن اللہ نے حکم دیا کہ اس میں اللہ کی فرما برداری کے ساتھ رہو. کھانا پینا سونا جاگنا اللہ کی فرما برداری کے ساتھ, اطاعت کے ساتھ. اگر اطاعت کے ساتھ فرما برداری کے ساتھ ہوگا تو ان چیزوں میں برکتوں کے دروازے کھلیں گے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ, کہ اگر بستی والے ایمان لاوے اور تقوی اختیار کرے, یعنی اللہ کے حلال کو حلال جانے, حرام کو حرام جانے, حرام سے بچے, حرام سے بچ جائے, تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم آسمانوں سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے, دہانے کھولیں گے برکتوں. پھر کھیڑوت کو ایک ایک فصل میں پورا ہو جائے گا, دوسری فصل کی اس کو ضرورت نہیں رہے گی, اس میں اللہ ایسی برکت کرے گا. 50 سال پہلے اتنے زیادہ بور ویل تھے, کوئی جانتا بھی نہیں تھا بور کس کو کہتے. کنویں پرانے قسم کے کنویں ہوتے تھے, فریج بجلی ہوتی نہیں تھی, ڈیزل کی چھوٹی چھوٹی موٹریں ہوتی تھی, محدود پانی نکلتا تھا, لیکن زمین میں برکتیں اللہ کی طرف سے. جتنی زیادہ تدبیر ہے کہ انسان میں, اتنا زیادہ محتاج ہو گیا, کیونکہ نافرمانی کے ساتھ تدبیر ہے, فرمابرداری کے ساتھ تدبیر جائز ہے, کرے جتنی کر سکے. تین فصل لینا ناجائز نہیں, ناجائز نہیں. 12 مہینے کاروبار کرنا ناجائز نہیں, لیکن نافرمانی کے ساتھ 1 مہینہ کرنا بھی ناجائز. نافرمانی کے ساتھ اللہ کے حکم کو توڑ کر, اس لیے ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم خود کو اس صحیح زندگی پر لانے کی کوشش کریں. یہ تبلیغ کا کام, یہ دعوت کا کام اسی کا ہے, اور اس میں جتنی تدبیریں کی جا رہی ہیں, اللہ کے راستے میں باہر نکل کر یا مقام پر رہ کر جو کام کا نظام ہے, جو ترتیب, وہ اسی کی ہے کہ ہر فرد امت میں احساس پیدا ہو اور صحیح زندگی کا شعور بیدار ہو, اللہ کا حکم پورا کرنے کا جذبہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرنے کا جذبہ پیدا ہو, بے دینی سے دین کی طرف لوٹیں, جہالت سے علم کی طرف آویں, گمراہی سے ہدایت کی طرف آویں, متکبرانہ اور ایسی غلط زندگی سے آدمی تواضع اور عاجزانہ زندگی کی طرف آویں, اور سارے قسم کی لڑائیاں جھگڑے سماج سے, قوموں سے, خاندانوں سے ختم ہو جائے, جو ان بنیادوں پر کھڑی ہوئی, جہالت کی وجہ سے جھگڑے, گمراہی کی وجہ سے لڑائیاں اور تکبر کی وجہ سے ساری لڑائیاں, یہ سارے رذائل ختم ہو معاشرے سے, افراد میں سے بھی ختم ہو, گھرانوں میں سے بھی ختم ہو, علاقوں میں سے بھی یہ رذائل ختم ہو, اور اس کی جگہ ہدایت آوے, حضور علیہ السلام والا مبارک علم وہاں آوے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے پاکیزہ اعمال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی پاکیزہ معاشرت کو جگہ ملے, بے دینی کے لیے جگہ باقی نہ رہے. جیسے جب اجالا نہیں ہوتا تو اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا, گلی میں اندھیرا, گھر میں اندھیرا, کمرے میں اندھیرا, ٹوائلٹ میں اندھیرا, کچن میں اندھیرا, کہ اجالا ہی نہیں, لیکن جب روشنی آتی ہے تو دھیرے 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 سارا اندھیرا کٹ جاتا ہے, جہاں جہاں بتی جلتی ہے وہاں کا اندھیرا ختم ہو جاتا ہے. ایسا جب اس محنت کے ذریعے سے کوشش ہوگی تو محلے کا اندھیرا کٹے گا, گھر کا اندھیرا کٹے گا, گھر کے ہر کمرے سے اور گھر کے ہر فرد سے اندھیرا, جہالت, گمراہی, بے دینی اور جتنے قسم کے صفات رذیلہ جو اوصاف ہے وہ ختم ہو جائیں گے, بری صفتیں. جس کے لیے بزرگوں نے ایک تو خروج کے اعتبار سے 4 مہینے چلے, سہروزہ اور مختلف ترتیبیں قائم کی ہیں, لیکن چونکہ زیادہ وقت ہر آدمی کا اپنے مقام پر گزرتا ہے, چلے میں آدمی جائے گا دوسرے 8 چلے گھر رہے گا, 4 مہینے میں جائے گا 8 مہینے گھر رہے گا, اور زندگی کا زیادہ وقت آدمی کا اپنے گھر کے ماحول میں گزرتا ہے. اس ماحول میں بھی ہر مسلمان اپنے دین پر عمل کرتے ہوئے, اپنے دین پر چلتے ہوئے, دین کی محنت کو بھی اپنا ایک کام بنا کر اپنے گھر میں جی رہا, کوئی مسلمان بے فکر نہ ہو, جیسے ہر گھر لے کر بیٹھا ہوا آدمی اپنی روزی روٹی کے بارے میں فکر مند ہوتا ہے, چاہے کوئی مزدوری کر لیتا ہے, کوئی تجارت کر لیتا ہے, کوئی ملازمت کر لیتا ہے, اور مختلف پیشے اختیار کر کے ہر گھر چلانے والا اپنے گھر کے معاملے میں متفکر ہوتا ہے, ایسے ہر مسلمان اپنے دین کے معاملے میں فکر مند بن کر زندگی گزارے. اس کے لیے روزانہ کسی ایک نماز کے بعد, عموماً اپنے ان علاقوں میں فجر کے بعد مسجد کی جماعت بیٹھتی ہے مشورے کے لیے. وہ مسجد وار جماعت جو ہے وہ پورے محلے کے تمام مسلمانوں کا نام ہے. اس کی کوئی ممبر سازی نہیں ہوتی کہ جن کو ممبر بنایا وہی بیٹھے گا, جن کو سبھیہ بنایا وہی بیٹھے گا. محلے میں بسنے والا ہر مسلمان جو کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں, اس کے ذمے ہیں کہ اپنی مسجد کی جماعت کے ساتھ مل کر اپنے اپنے گھر والوں کے, اپنے محلے والوں کے اور پورے عالم کے انسانوں کے دین کی فکر کریں. سب مل جل کر بیٹھے ہیں, سر جوڑ کر بیٹھے ہیں, ایک دوسروں کے مددگار بن کر بیٹھے, چھوٹے بن کر بیٹھے, چھوٹے بن کر سو بیٹھے تو سو کا بیٹھنا آسان ہو جائے, بڑے بن کر دو نہیں بیٹھ سکتے, دونوں کی بات آگے نہیں چلے گی. بڑے بن کر بیٹھیں گے تو دو کا بیٹھنا مشکل ہے, چھوٹے بن کر سو بیٹھیں گے تو سو آرام سے بیٹھ جائیں گے. چھوٹے بن کر کہ مجھے تو کچھ نہیں آتا, اللہ کا دین سیکھ رہا ہوں, میں بھی دین پہ محنت کو سیکھ رہا ہوں, سیکھتے سیکھتے میں بھی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جاؤں اس نیت سے. اور مصلح بن کر نہیں بیٹھنا ہے کہ ہم تو سدھرے ہوئے ہیں, اب سب بگڑے ہوئے ان کو سدھارنے کی محنت کر رہے ہیں. مصلح بن کر نہیں بیٹھنا, بلکہ اپنی اصلاح کی نیت سے کہ میری بے دینی ختم ہو جائے اور میری اپنی ضرورت ہے کہ میں دین کی نسبت پر تھوڑی دیر فکر کروں, میری ذات میں کیسے دین آئے, میرے گھر میں, میرے محلے میں, میری بستی میں, پورے عالم میں اللہ کا مبارک دین کیسے زندہ. چھوٹے بن کر بیٹھیں گے اور سوچیں گے, اس میں ہماری تربیت ہوگی. روزانہ بیٹھیں گے, اس میں ہماری تربیت ہے, لوگوں کی ہمدردی دل میں آئے گی. مشورے میں بیٹھ کر ہمدردی اور خیرخواہی کا جذبہ بڑھنا چاہیے, تب ہمارا بیٹھنا صحیح. اور اگر مشورے میں بیٹھ کر ہمدردی نہیں بڑھ رہی, غصہ آ رہا ہے لوگوں پر یا تنقید آ رہی ہے, تو ہمارے بیٹھنے میں کمی ہے, ہمارے سوچنے میں کمی ہے. نتیجہ دوسرا آ رہا. ایک ٹوکرے میں پھل رکھے پکانے کے لیے, لیکن پکنے کے بجائے سڑنے پر چلے گئے. ہوتا ہے بس دس رکھے تھے تو پانچ تو پک رہے ہیں, پانچ سڑنے کی طرف جا رہے ہیں. تو پکنے کے لیے رکھے ہیں, سڑانے کے لیے تھوڑے رکھے. اپنی سوچ بنانا ہے, اپنی فکر بنانا ہے, ہمدردی اور خیرخواہی, امت کی پوری امت کی ہمدردی پیدا ہو, پوری امت کی خیرخواہی پیدا ہو. جتنا سامنے والا آدمی بے دینی پر ہے اس کے لیے اتنی زیادہ ہمارے دل میں ہمدردی بڑھے. ہاں, گھر میں دیکھیں پانچ چھ بچوں میں جو بچہ زیادہ نافرمان ہوتا ہے, اس بچے کے لیے اس کی ماں کے دل میں زیادہ رحم ہوتا ہے, زیادہ رحم ہوتا ہے. اس کو کوئی برا بھلا کہے گا تو اس کی ماں پتہ کہ بھائی ایک بےچارا ایسا ہے, تم ایسا مت کہو, اللہ اس کو سدھار دے گا. اس کا باپ جو غصہ کرتا ہے تو اس کی ماں فوراً نکل گئی, ایک بےچارا ایسا ہے تو اس کے لیے دعا کرو, ماننے نہیں دیتی, اس غصہ نہیں کرنے دیتی. زیادہ جتنا بگڑا ہوا ہے اتنا رحم زیادہ ہوتا ہے. یہی ہمدردی کا تقاضا, سچی ہمدردی کا تقاضا یہی ہے کہ جتنی لوگوں میں زیادہ بے دینی ہوگی, جن لوگوں میں ہوگی, ان کے لیے ہمارے دل میں رحم زیادہ آئے گا. یہ بچار ہے, آخرت میں کیا ہوگا, آخرت میں ان کا کیا ہوگا. حضرت معاویہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات کے علاقے میں جو ابتدا میں گشت کرتے تھے تو مقامی لوگوں کو, بستی والوں کو جمع کرتے تھے, پھر ان سے بات کرتے تھوڑی بہت ایمانیہ, پھر پوچھتے ان کو, بھائی اگر کوئی آدمی آنکھ جلا رہے اور ہمارے کسی بھائی کو اس میں ڈال دے تم پسند کرو گے؟ نہیں حضرت, ہم کبھی پسند نہ کریں. کہ جتنے لوگ نماز چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں وہ اپنے لیے جہنم کی آنکھ جلا رہے ہیں, چلو ہم ان پر جا کر محنت کریں, ان کو سمجھا لیں, پھر ان کو لے کر ساتھ میں جا کر ان کی منت کرتے تھے, ان کی خوشامد کرتے تھے, ان کو سمجھاتے تھے. ہمارا یہ کام اس کا ہے, ہمارا مشورہ اس کے لیے ہے کہ بھائی اب مشورہ کر کے بستی میں جا کر ایک ایک مسلمان کی خوشامد کرنے کا نام تبلیغ ہے, ایک ایک کی خوشامد کرنے کا نام, جا کر خوشامد کریں گے, ہاتھ جوڑیں گے, پیر پڑیں گے, ان کو سمجھائیں گے, انجام کار سے آگاہ کریں گے, اعمال کے فائدے بتائیں گے ان کو, اور بیعملی پر آخرت کا نقصان سمجھائیں گے پوری ہمدردی اور خیرخواہی کے ساتھ, جیسے ایک ماں اس کے دل میں اپنے بچے کے لیے جو قدر و عظمت عزت ہوتی ہے, ایسے ہی ہر ہر مسلمان کے لیے ہمارے دل میں وہی قدر و عظمت و عزت ہوگی کہ اللہ کا بندہ ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے, بڑی نسبت اس کے ساتھ لگی ہوئی. آدمی محلے کے کسی مالدار کا بیٹا شرابی ہوتا ہے, اس کو نصیحت بھی کرتا ہے, ذرا ٹھیک سے کرتا ہے کہ بھائی تمہارے ابا بڑے آدمی ہیں, محلے میں تمہاری عزت ہے, تم ایسا کرو گے تو اچھا نہیں لگتا. اور کوئی غریب کا بیٹا شراب پی کر آیا تو دو مارے گا پہلے, پھر لڑکا مارو کیونکہ غریب کا بچہ ہے, اس کی نسبت کو ایسے آدمی کے ساتھ ہی جو لڑائی کے لیے ہمارے پاس آئے گا. تو نصیحت کا طریقہ بدل جاتا ہے فوراً. مالدار کا بیٹا ہو تو اس کو نصیحت اچھے انداز میں آدمی کرتا ہے کہ بڑے آدمی کا بیٹا برا لگ جائے گا ان کو, اس کے ابا لڑائی کریں گے ہم سے. اور کوئی فقیر کا بیٹا ہو محلے میں آ گیا شراب پی کر, دو آدمی اس کو ماں بہن کی گالیاں دیتا ہے. ہر ہر بندہ اللہ کا بندہ ہے, ہر آدمی اللہ کا بندہ ہے, اور اللہ اپنے بندوں پر 70 ماؤں سے زیادہ رحیم, نماز نہ پڑھنے کے باوجود ان کو کھانا دے رہا ہے, شراب پینے کے باوجود ان کی روزی روٹی بند نہیں کر رہا ہے, کتنا رحم ہے اس کو اپنی مخلوق پر, اس مخلوق پر رحم کرنے کا حکم دیا ہے, اور اس مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کا حکم دیا ہے کہ ہم خیر خواہ بنے, ان کے ہم خیرتا بنیں گے, ان کے عیوب پر پردہ ڈالیں گے, ان کی برائیوں کو اچھالیں گے نہیں, پردہ ڈالیں گے, محبت کے ساتھ سمجھائیں گے, فضائل بتائیں گے, منت کریں گے, خوشامد کریں گے, ہاتھ جوڑیں گے, پیر پڑیں گے, یہ ہمارا کام ہے. اس کے لیے روزانہ 2.5 گھنٹے لگانے, اس کے لیے روزانہ کتنا لگانا بھائی؟ 2.5 گھنٹہ. یہ مشورہ کیا مسجد میں, اب 2.5 گھنٹے کے ذریعے سے گھر گھر جا کر ایک ایک مسلمان کو لے کر بیٹھنا, اس کو سمجھانا, اپنی پوری طاقت صرف کرنا اس کے پیچھے. رسمی طور پر ملاقات نہیں, گئے السلام علیکم ورکے اچھے دعا سلام کر کے پورا کر دیا, یا جا کر سے تشکیل کر لی, بھائی 3 دن کی جماعت جا رہے تم چلو, اب بہت دن ہو گئے, اب تو تم کو جانا پڑے گا, 4 مہینے میں تمہارا گزشتہ سال بھی نام تھا, اس سال بھی ہے, اب تم کو جانا پڑے گا. بلکہ اس بھائی کو لے کر بیٹھ کر محبت کے ساتھ ملاقات, اچھے اسلوب سے سب سے پہلے اس کو سلام کرنا, اس کو مصافحہ کرنا, بہت دنوں کے بعد ملاقات میں معانفہ کر لیں, اظہار محبت کریں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں, آپ ہمارے بھائی ہیں, ہم صرف اللہ کی نسبت پر آپ کو ملنے کے لیے آئے. اور مسلمان جب اللہ کی نسبت پر مل کر مصافحہ کرتا ہے تو مسافر کے ہاتھ چھوٹنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیتا ہے. مصافحہ کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. یہ مسلمان سے ملنے کی فضیلت, اظہار محبت کریں, ملنے کی فضیلت بتائیں, اپنے آنے کا مقصد بتائیں, بھیا ہم آپ کے پاس صرف اللہ کے لیے ملنے کے لیے, آپ ہمارے بھائی ہیں اور کوئی غرض نہیں, تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھیں گے, آ جائیں گے, موقع ہے تو گھر میں ہی بیٹھے ہوں گے, اگر موقع ہے تو ان کے گھر میں ہی لے کر بیٹھ, گھر چھوٹا ہے, تنگی ہے یا اور کوئی عذر ہے تو باہر بیٹھ جاتا, گھر میں بیٹھ کر سب سے افضل ہے کہ بیٹھ کر گھر میں اطمینان سے وہ بیٹھے گا, بات سنے گا, کہ اپنے ہی گھر میں, دوسرا گھر میں بچے ہوں گے ان کو بھی بلا لیں گے. اور عموماً یہ ہوتا ہے جب آگے کے کمرے میں بیٹھ کر مردوں سے کوئی بات ہوتی ہے تو عورتوں کے کان وہی ہوتے, تو ہماری دین کی بات, ایمان یقین کی بات, آخرت کی بات اس گھر کی فضاؤں میں مرد عورتوں تک پہنچے گی. تو کوشش اس کی کریں کہ ہماری جو روزانہ کی ملاقاتیں گھر گھر کی وہ اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھ کر بات کریں, اور ہماری جو بات ہے उसमें ईमान की बात, ईमानियत को बोलना, ईमानियत को अल्लाह को बोलना है, अल्लाह की कुदरत को बोलना है, अल्लाह की बड़ाई को बोलना है, अल्लाह की अजमतों को बोलना है, अल्लाह की ताकत को बोलना है। अभी हमारे दिलों में अल-गैरुल्लाह की ताकत, गैरुल्लाह की अजमत बैठी हुई है, अल्लाह के गैर का तासुर है हमारे दिलों में, हम सब मुतासिर हैं अल्लाह के गैर से, अल्लाह के सिवा सब कुछ गैरुल्लाह है, अल्लाह के अलावा सब अल्लाह का गैर। माल के, माल का तज़किरा, चीजों का तज़किरा, सोने चांदी का तज़किरा, हुकूमत और हुकूमत के लोगों का तज़किरा, जमीनों का और जमीनों की आमदनियों का तज़किरा, ये सब अल्लाह का गैर है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी में देखते हैं कि आपकी जबान पर 24 घंटे अल्लाह का नाम है, 24 घंटे अल्लाह का, सुबह शाम जितनी मसनून दुआएं हैं रात दिन पढ़ने की, उन दुआओं को हम देखें, हर दुआ में किसी न किसी तरह अल्लाह की तारीफ है, उसकी अजमत बयान हो रही है, उसकी बड़ाई बयान हो रही है, उसकी कुदरत बयान हो रही है, उसकी हिकमतें बयान हो रही है, उसका शुक्र हो रहा है, और यही जबान पर आपके जारी है। सुबह उठ रहे हैं दुआ के साथ है, वुजू करने जा रहे हैं दुआ के साथ, इस दिन में जा रहे हैं दुआ कर रहे हैं, कोई मुलाकात कर रहा है उसको दुआ दे रहे हैं, कोई सलाम कर रहा है उसको जवाब दे रहे हैं, घर से निकल रहे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, घर में दाखिल हो रहे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, मस्जिद से निकल रहे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं दुआ पढ़ रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं तो दुआ पढ़ रहे हैं, दूध पी रहे हैं तो दुआ पढ़ रहे हैं, पानी पी रहे हैं तो दुआ पढ़ रहे हैं, कोई लम्हा खाली नहीं गुजर रहा। और ये सारी दुआओं में है क्या? पानी पीकर पानी की तारीफ नहीं की, पानी पीकर सुबह का वक्त हुआ तो सुबह के वक्त की तारीफ नहीं की, अल्लाह की तारीफ की। अस्बहना वअस्बह अल-मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं, चीजों को इस्तेमाल करके चीजों में उलझ नहीं गए, चीजों को इस्तेमाल करके उन चीजों को बनाने वाले में मशगूल हो गए, चीज का बनाने वाला ये तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने हमको खिलाया, खाना खाकर ये पढ़ा। अल्लाह के गैर का तासुर ये है कि इंसान अल्लाह के गैर में मशगूल हो जाए, और जितना अल्लाह से दूर होगा उसके बकदर आदमी की वो मशगूली उतनी ज्यादा होगी, बल्कि वो मशगूली बढ़ते 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 फिर अल्लाह के गैर को इंसान माबूद बना लेता है, उसको माबूद बना लेता है। इसलिए लोग जो है ना धन पूजा करते, क्या करते हैं बोलो ना भाई, हाँ धन पूजा, पैसों की पूजा करते, वो तो मखलूक है, उसकी कैसे पूजा हो, उसको तो बनाने वाला कोई और है, उस धन में तो नफा अल्लाह डालेगा तो नफा होगा, वरना वो धन में भी नफा नहीं, क्या आदमी धन छोड़ के चला जाता है, इतना ढेर सारा धन होकर भी आदमी का इलाज नहीं होता, क्या आदमी का ढेर सारा धन करोड़ों पति है लेकिन हॉस्पिटल में है, डॉक्टर को उसके बेटे खुशामद के साहब 50 लाख दे तो 50 ले लो, पर कहीं करो कि आपका दिक्कत ही था, एम नहीं कुछ हो, ऐसा नहीं, उस धन की क्या पूजा करे, उस धन के बनाने वाले की पूजा होती, उसका पैदा करने वाला अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर वक्त उसकी उसकी तारीफ की, सुबह हुए तो अस्बहना वअस्बह अल-मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और शाम हुई अम्सैना वअम्सा अल-मुल्कु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, खाना खाकर खाने की पूजा नहीं, खाना खाकर खाना देने वाले के लिए तारीफ के कलिमात हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना, तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने हमको खिलाया है, वो सकाना जिसने हमको पिलाया है, वो जालना मुस्लिमीन, और सारी तारीफ है उसके लिए है कि उसने हमको मुसलमान बनाया। फखर के साथ आदमी कहेगा हर खाने के बाद कहेगा वो जालना मुस्लिमीन, कि उसने मुसलमान बनाया, हम मुसलमान हैं और अल्लाह ने इस्लाम दिया है, अपने तरीके पर एक किस्म का फख्र होगा, उसका बार बार इजहार होगा कि हम अल्लाह के बंदे हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ये हमारे लिए फख्र की चीज है, हमारे पास बंगला हो ना हो बंदे हम हैं, बंदे होने का फख्र, बंगले होने पर क्या फख्र कि जिसको छोड़ के जाना है, बंदा होने पर फख्र है, चाहे मट्टी के झोंपड़े में जिंदगी गुजार रहे हैं हम अल्लाह के बंदे हैं, सारी तारीफ है उसके लिए जिसने हमको खिलाया खिलाया मुसलमान बनाया। तारीफ है उसके लिए जिसने सुलाया और उठाया, तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने जिंदगी दी है, तारीफ है उस अल्लाह के लिए जिसने ईमान और इस्लाम की नियामत से मालामाल किया है। मुंह भर कर इसको बोलना है, बार बार बोलना, बार बार बोलना है, उस अल्लाह को बार बार याद करना है, उसकी नेमतों का इस्तेहजार यानी ध्यान करना है। तो उसकी बड़ी नेमतें हम पर बरस रही है, बड़ी नेमतें उसकी हमारे ऊपर है, उन नेमतों को हम शुमार नहीं कर सकते। इन तउद्दू नेमत अल्लाह ला तुहसूहा, कि तुम अल्लाह की नेमत को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते, बड़ी नेमतें उसकी है। हाली अगर अकेला जिस्म है, दो जोड़ी कपड़े भी अगर उसके आदमी के पास नहीं है तो तंदुरुस्त जिस्म क्या मामूली नेमत। अगर नंगे बदन आदमी खड़ा है, एक जोड़ी कपड़ा नहीं है, लेकिन तंदुरुस्त जिस्म अल्लाह का दिया हुआ है तो ये मामूली नेमत नहीं है। वो हजार उन जिस्मों से अफजल है जिनके पास पहनने के 100 जोड़ी कपड़े हैं लेकिन तंदुरुस्ती नहीं है। अल्लाह ने हमें तंदुरुस्ती दी, जिंदगी दी है, जवानी दी है, इसका तज़किरा करना है। ये मुलाकातें जो हमारी इसके लिए है कि हम अपने भाई के पास बैठकर ऐसी बातें करें कि भाई अल्लाह कितना बड़ा है, उसका कितना बड़ा हम पर फजल है, उसने जिंदगी दी, जवानी दी, सही सालिम आंखें दी है, सही सालिम कान दिए हैं, अच्छा सही सालिम तंदुरुस्त दिमाग दिया है, वो बहुत बड़ी जात है। उसी अल्लाह ने हमको पैदा किया है, उसने अपनी फरमाबरदारी के लिए पैदा किया है, जिसके लिए अल्लाह ने हम पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की है। अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ेंगे अल्लाह हमारी जिंदगी में हमारी रोजी में बरकत दे देगा, अल्लाह की जिम्मेदारी में आ जाएंगे। जो आदमी 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करता है वो अल्लाह के जिम्मे में, उसकी जिम्मेदारी में आ जाएगी, वो अल्लाह हमारी मदद करेगा, वो बहुत बड़ा रब है। हमारे मसलों का हल नमाज में, ऐसे उस भाई से बातें करनी, ऐसे इल्म के फायदे हैं, जिक्र के फायदे हैं, अल्लाह का नाम लेने के फायदे कितने, और ऐसे ही अखलाक एहसान की बातें, सामने वाले को मुजरिम समझकर बात नहीं करेंगे, उसको अपना भाई समझकर बात करना कि हमारा भाई है, हम उसके खैरखान हैं, हम उसकी भलाई चाहते हैं, उसको मुजरिम समझकर बात नहीं करना बल्कि हम उसके खैरखान हैं, वो हमारा भाई है, सगे भाई की तरह है। इन्नमल मुमिनून इख्वा, के मुसलमान आपस में सगे भाइयों की तरह है। ये खैरखाई लेकर घर घर जाना और इत्मीनान के साथ बैठकर आधा घंटा बैठकर बात करेंगे, उसी में 6 सिफात की बात करके फिर आखिर में उस भाई को दीन की मेहनत के लिए तैयार करना, उसके फजाइल बताना है कि अगर हम दीन की मेहनत करेंगे, अल्लाह की निस्बत पर चलेंगे तो अल्लाह का ताल्लुक मिलेगा, ईमान की हकीकत मिलेगी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मिलेगी, आपके तरीकों की आजमत मिलेगी, आपके तरीकों पर जिंदगी गुजारने का शौक और जज्बा पैदा होगा, और जब आपके तरीकों पर हमारी जिंदगी गुजरेगी तो अल्लाह की रहमतें आएगी, बरकतें आएगी, चैन और सुकून आएगा, हकीकी मजा जिंदगी का मजा जो है वो सुन्नत वाली जिंदगी में, हकीकी मजा जो असली मजा है, जिंदगी से लुत्फ उठाएंगे, क्या कहते हैं उसको, एंजॉय, एंजॉय कहते, ये कागज कागज के पुर्जों में कोई एंजॉय होता है और प्लास्टिक के डिब्बों से एंजॉय होता है, वो तो उसका ताल्लुक तो दिल से। अला बिज़िक्रिल्लाही तत्मइन्नुल क़ुलूब, कान खोल कर सुन लो कि अल्लाह की याद में दिलों का सुकून और इत्मीनान है, बगैर अल्लाह के नाम के कोई एंजॉय नहीं, सब धोखा है, खाली बातें हैं, सब झूठ है, अल्लाह के नाम के बगैर कोई लुत्फ नहीं है, अल्लाह के जिक्र के बगैर कोई मजा नहीं, वीरान घर है वो दिल, वीरान घर है जिसमें अल्लाह का कलाम नहीं है, और वीरान घर में हमें पता है कौन बसता है, जो घर वीरान होता है वहां क्या होता है, वहां छिपकलियां होगी और किस्म किस्म के कीड़े होंगे और वहां जिन्नात और शयातीन होंगे, वहां कोई मजा नहीं, वीरान घर है जिस दिल में अल्लाह का नाम नहीं है, जिसमें अल्लाह का कलाम नहीं है, जिस जबान पर अल्लाह की याद नहीं है, जिस घर में अल्लाह का नाम नहीं, नमाज नहीं, जिक्र नहीं, तिलावत नहीं, इबादत नहीं, उस घर में क्या मजा है, वो वीरान घर है। उस आदमी को उसके घर में बैठकर घर के अमाल समझाएंगे कि भाई अपने घर में रहकर हमें अमाल करने हैं, पांच वक्त की नमाजों की घर में पाबंदी हो, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र हो, कुरान की तिलावत हो, बच्चे बड़े बूढ़े मर्द औरतें घर में बैठकर रोजाना पाबंदी के साथ अजमत के साथ अल्लाह के कलाम को कलाम इलाही समझकर अदब एहतराम के साथ कुरान को अपने हाथ में लेकर या तिपाई पर रखकर इत्मीनान सुकून से अल्लाह का कुरान पढ़ेंगे घर में। घर में फजाइल की तालीम होगी जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और सहाबा के अजवाज मुतहरात और बनाते तैयबात के मुबारक वाकयात उन मुबारक हस्तियों की मुबारक जिंदगी को पढ़ा जाएगा घरों में, उसकी तरबीब होगी कि घर में खैर आएगी, फिर उससे घर में लायानी नहीं होगी, ईरान तुरान की बातें नहीं होगी, और घर में दुनिया के मादा परस्त लोग और उससे ऊपर बेहया और बेशर्मों का तज़किरा नहीं होगा, न उनका तज़किरा होगा न उनकी तस्वीर हमारे घर में होगी किसी कि जिनके जरिए से फसाद घर में आता हो, जिनके जरिए से रहमत के फरिश्ते घरों से निकल जाते हैं, जिस घर में का तस्वीर है उस घर में फरिश्ते नहीं ठहरते, तस्वीर हमारे मजहब में जायज नहीं, इल्ला के जरूरत के लिए, जरूरत के लिए बकदर जरूरत, वो जरूरत के वक्त होगी कि जहां मजबूरी है, जहां मजबूरी होती है, वीजा में देनी पड़ती है, पासपोर्ट बनाने के लिए देनी पड़ती है या दीगर ऐसे कामों में, बाकी तस्वीर हमारे मजहब में जायज नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया। तो घर में ऐसा कोई निजाम नहीं होगा कि अखबार के जरिए से घरों में तस्वीर आ रही है या दीगर ऐसे जराए हैं जिन जराए के जरिए से घर में तस्वीरें और वीडियो बच्चे देख रहे हैं, बच्चियां देख रही है, उनकी आंखें खराब हो रही है, दिल खराब हो रहा है, घर से रहमत के फरिश्ते जा रहे हैं, शयातीन आ रहे हैं, हर मुसलमान का घर इससे पाक हो जाए, इतनी तरगीब देनी है हर मुसलमान को कि अपने घर में इन अमाल को नमाज जिक्र तिलावत इबादत फजाइल की तालीम दीन के इल्म का सीखना सिखाना आपस में एक दूसरों की खिदमत में इतने मशगूल हो जावे, इतने मशगूल हो जावे कि इस किस्म के दूसरे लायानी के लिए वक्त न बचे, 24 घंटे अपने कामों में घरेलू अपनी राहत और आराम में और एक दूसरों की खिदमत में मशगूल हो जावे, असल कामों में लग जावे, असल कामों में लग जावे और ख्वाहिशात निकल जावे, ख्वाहिशात निकल जावे, सुन्नत वाली जिंदगियों को घरों में जगह मिले, ये मकसूद है घर घर की मुलाकातों से, ये घर घर की मुलाकातें सिर्फ 3 दिन चिल्ले 4 महीने की तश्कील के लिए नहीं है, वो छठा काम है, वो भी एक काम है, लेकिन उसके साथ हर घर में नमाज जिक्र तिलावत इबादत हया, हर घर में दावत, हर घर में तालीम, हर घर में जिक्र और इबादत और हर घर में खिदमत खल्क का जज्बा मर्दों में औरतों में बच्चों में बूढ़ों में जवानों में छोटों में बड़ों में सब में इसका जज्बा भी बन रहा हो और सब धीरे 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 इन आमाल की मश्क कर रहे हो। सबसे पहले घर में पराई जिंदा हो रहे हो कि हमारे इस 2.5 घंटे की मेहनत के जरिए से हमारे मोहल्ले में कोई मर्द कोई औरत बेनमाजी न रहे, कोई जवान लड़का लड़की बेनमाजी न रहे, हमारे घर मोहल्ले के तमाम घरों में फजाइल की तालीम शुरू हो और मोहल्ले के एक एक घर में जिक्र और तिलावत और इबादत की अमूमी फिजा बनी हुई हो, जहां तक कि वो फिजा ऐसी हो कि मोहल्ले के घरों में तहज्जुद जिंदा हो जाए, मोहल्ले के घरों में तहज्जुद हो रही हो कि रात में जल्दी आराम करके हर मुसलमान मर्द औरत अपने बच्चों को लेकर सुबह जल्दी बेदार हो, सुबह जल्दी बेदार, दीन और दुनिया दोनों की भलाई का रास्ता सुबह जल्दी उठना है और दीन और दुनिया दोनों को तबाह करने का रास्ता रात में देर तक जाकर सुबह देर से उठना है। वो कौमें कभी तरक्की नहीं करती जो देर तक पड़े सोते रहते, उनकी दुनिया भी बर्बाद होती है क्योंकि रोजी की बरकत भी सुबह के वक्त में, हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत की सुबह में बरकत की दुआ की है कि अल्लाह मेरी उम्मत की सुबह में बरकत दे देना, सुबह के वक्त में बरकत, حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس التفریط فی الیقظه انما التفریط فی النوم, کہ آدمی دیر سے اٹھتا نہیں ہے, دیر سے سوتا, دیر سے سوئے گا تو ظاہر بات ہے دیر سے اٹھے گا. کہ رات میں گھروں میں جلدی سونے کا ماحول بن رہا ہے اور تہجد میں لوگ اٹھ رہے ہیں اور فجر میں مسجد بھری ہوئی ہے, کوئی ایک آدمی فجر چھوڑنے والا نہیں. نماز کی عمومی فضا ہے, نماز سب سے بڑی و اساس اور بنیاد ہے. اس ڈھائی گھنٹے سے چاہا جا رہا ہے کہ ہر محلے کے بالغ مسلمان کا تعلق مسجد سے جڑے, وہ پانچ وقت کا پکا نمازی بنے, اور گھر میں عورتیں اپنے اپنے وقت پر پانچوں وقت کی نماز اہتمام اور پابندی کے ساتھ پڑھنے والی بنے, اور عورتیں اپنے بچوں کو بھی اپنے ساتھ نماز پڑھوا رہی ہیں, اور گھر میں عبادت کی فضا بنے. اللہ یعنی گھروں سے ختم ہو, سب سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر نماز زندہ ہو گئی. یہ سب سے بڑی اساس ہے. اس لیے ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر محنت نماز پڑھنا. 100% لوگوں کا تعلق جب مسجد سے جڑے گا نماز ساری خیر لے کر آئے گی. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, جب جماعت نمازوں میں خشوع پیدا ہوا تو قرآن میں پہلی دلی علامت کی بتلائی ایمان والوں کی کامیابی کی کہ ان کی نمازوں میں خشوع ہے. ہماری یہ کوشش ہوگی مسجد کی جماعت ایک محنت کرے کہ ہدف بنا کر کہ محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو, گھروں میں عورتیں اور مسجد میں سارے مرد آ کر با جماعت نماز ادا کریں. جماعت چھوڑنا بھی بہت بڑا جرم ہے, حدیثوں میں اس پر وعید ہے. نماز میں سستی کرنا بھی جرم ہے, حدیثوں میں اس پر وعید ہے, اور نماز کی پابندی پر فضائل اور اجر ہیں اہتمام والی نماز پر. کوشش کریں گے ہم اس کو بولیں گے, نماز کے فائدوں کو بولیں گے, نماز کے فائدوں کو بولیں گے اور اعمال کے نفعوں کو بتائیں گے. جب نماز زندگی میں آئے گی تو پھر دھیرے دھیرے بقیہ رضائل ختم ہو جائے گی. ایک آدمی پکا پانچ وقت نماز جو ہو گیا اس نماز کی برکت سے بہت سارے گناہوں سے بچ جائے گا, اور پھر دھیرے 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 باقی بچے گناہوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو بچنے کی توفیق دے دے گا. اس لیے اس کی کوشش کرنی ہے. کریں گے انشاءاللہ. کون کون کریں گے؟ اپنی ذات سے طے کریں گے انشاءاللہ پانچوں وقت کی نماز با جماعت پابندی سے پڑھیں گے, اور روزانہ ڈھائی گھنٹے مسجد کی محنت میں لگائیں گے. کون کون لگائیں گے ڈھائی گھنٹے؟ پورے ڈھائی گھنٹے, دو گھنٹے نہ 30 منٹ, اس کا نام ہے ڈھائی گھنٹے. ڈھائی گھنٹے کو استرا نہیں ہے, خالی ایک ملاقات کر کے آگے ڈھائی گھنٹے پورے ہو, بلکہ مسجد کی جماعت کے ساتھ رہ کر صبح شام, اگر صبح وقت ہے تو صبح دے دیں, پورا وقت صبح نہیں تو ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ صبح دیں. اور سب سے اچھا وقت جو ہے صبح کا وقت ہے ملاقاتوں کے لیے, صبح کا وقت بہترین وقت ہے, اسی میں ماحول بناؤ. صبح صبح لگیں گے تو 30 دن پورے ڈھائی گھنٹے لگیں گے, 30 دن پورے مہینے کے 30 اور 30 دن. اس لیے کوشش کریں کہ صبح ہی اس کا ماحول بنا دو. ماحول نہیں ہے تو ماحول تیار کریں گے. ہم فجر کی نماز میں آ گئے, فجر بعد مشورہ کر لیا, مشورے کے بعد اگر ابھی وقت ہے اور اپنے معمولات پورے کر لیں, مسجد میں رہے, زیادہ تقاضا ہے چائے کا تو چائے پی کر آئے نماز میں, 10 منٹ جلدی اٹھ جا رہے, چائے پی کر مسجد میں آ جاؤ. اطمینان کے ساتھ مشورہ کیا, مشورے کے بعد بیٹھیں, اپنے تسبیح پوری کر لیں, تلاوت کریں, اشراق کی نماز پڑھیں, دو رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگیں اپنی ہدایت, اپنے محلے والوں کی ہدایت مانگیں, اور پھر دو دو کی جماعتیں بنا کر محلے میں پھریں, گھر گھر جائیں. اب تو ایک اچھا خاصا مجمع محلوں میں وقت لگا ہوا ہے, 4 مہینے قلعے لگے ہوئے. پہلے تو یہ تھا کہ نئے لوگ ہیں ان کو جگانے میں ناراض ہو جائیں گے, برا لگے گا ان کو, اب 4 مہینے لگے ہوئے ہیں, قلعے والے ہیں, مانوس ہیں, اور ان کے پاس ہمیں فجر سے پہلے تھوڑا جانا, اشراق کے بعد سورج نکل چکا. آپ کو اب جا رہے ہیں, ماحول بنا رہے ہیں بھائی, بنائیں گے ماحول انشاءاللہ. کون کون طے کرتے ہیں انشاءاللہ صبح صبح ڈھائی گھنٹے جائیں گے, سبھی جائے گا بھائی انشاءاللہ. ہاں جو مصروف ہیں, ٹیچر ہیں اسکول کا یا مدرس ہے مدرسے میں, ان کو مدرسے جانا ہے, کیا صبح ہی کام ان کا ہوتا ہے, صبح کے علاوہ نہیں ہوگا. باقی دکاندار لوگ ہیں 9 بجے جاتے ہیں, 10 بجے جاتے ہیں, 11 بجے کھولتے ہیں, ان उसको कोई मसला ही नहीं। या आदमी को अपना काम खुद ही करना है तो 2 घंटे के बाद कर ले, बजाय 7 बजे शुरू कर 9 बजे से कर ले। लेकिन सुबह सुबह जो है मेहनत के लिए अपना वक्त फारिग करें। ज्यादातर लोग सुबह अपने घरों में भी होते हैं और उस वक्त इत्मीनान से मुलाकातें होती हैं, इत्मीनान से घरों में बैठकर मुलाकातें करें और हर फर्द उम्मत से पूरी बात करके पहले 4 महीने का मुतालबा करें, फिर उसके बाद उससे चिल्ला से रोजा मकामी मेहनत और मकामी दीगर अमाल में उनको शरीक करने की कोशिश करें। ऐसे ही रोजाना फजाइल की तालीम, मस्जिद में एक वक्त तालीम और घर में वही तालीम, ये फजाइल हमारी रिजा। अभी हम जितना दुनिया और दुनिया की चीजों को सुनते हैं जिसकी हमें कोई जरूरत ही नहीं। अच्छा भाई, अगर 1 महीने तक हम लोग अखबार न पढ़े तो हमारी आवक कितनी कम हो जाए, बोलो ना भाई। 1 महीने तक अगर कोई पेपर न पढ़े तो कितने पैसे कम मिलेंगे रोजी, अरे बोलो ना भाई। 500 बचेंगे, लो 500 रुपए बचेंगे पेपर से। और 1 महीना अगर इंटरनेट ना चला तो क्या नुकसान होगा, बोलो ना भाई, उसके 500 बचेंगे। ये तो सारा वक्त का जिया है, अकलमंदी नहीं। और दीगर होटलों पर, चौपालों पर, देहातों में छोटी छोटी दुकानों पर बैठना, ये अकलमंदी की चीज नहीं, ये अकलमंदी की चीज नहीं। आप देखो ना, परिंदों को भी रोजी रोटी के टाइम पर कोई नहीं बैठते। परिंदे होते ना, परिंदे सुबह से निकल जाते हैं, शाम को पेट भर के अपने बच्चों की रोजी रोटी पूरे तो फिर जाकर आते। दुनिया का कोई जानवर भी अपनी रोजी रोटी के टाइम पर किसी जगह बैठता नहीं सिवाय गधे के। वो भी अपनी मेहनत पर लगे रहते, वो भी मेहनत पर लगे। और यहाँ एक आदमी दुकान अपनी है, उसमें 2 पेपर लाके रखता है, 2 पेपर लाके रखते दुकान पर। दुकान तो पेपर पढ़ने की जगह, धंधा करने की जगह। फिर वहां बेकार लोगों का मशवरा होता है, सारे जमा हो जाते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, परेशान करते हैं। तो आदमी ने खुद ही वो सारी मुसीबत पा ली अपने यहाँ, अपने औकात की हिफाजत करें। हाँ, चौपालों पर, होटलों पर, पान के गल्लों पर, ये अकलमंद लोगों का काम नहीं है। आप देखो जितने तरक्की आपका ममालिक है वहां आपको कोई आदमी दिखेगा नहीं, पान के गल्लों पर, होटलों पर, चौपालों पर कोई नहीं दिखेगा। चलते चलते गाड़ी में से अपने सामान लेकर आगे बढ़ेगी, कोई वहां खड़ा नहीं रहेगा, कोई नहीं। जो दुनियादार लोग हैं वो अपनी दुनिया का नुकसान नहीं चाहते, अपने औकात की हिफाजत करते हैं। अपने औकात को उन्होंने तकसीम किया है, 6-8 घंटे कारोबार में लगाते हैं, 2 घंटे भी बच्चों के साथ गुजारते हैं, 1 घंटा वर्जिश करते हैं, 6 घंटे सोते हैं, 1 घंटा घर का कामकाज मार्केट से खरीदी करते हैं, 1 घंटा बच्चों को लेने जाने छोड़ने का करते हैं, अपना शेड्यूल बनाते हैं। और हमारा कोई निजाम ही नहीं है। फजाइल के हल्कों में अपने आप को बिठा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मस्जिद की तालीम हो रही है, एक आदमी भी उठकर न जा, सारे लोग बैठकर सुने। ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक बातें हैं। नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की सबसे बड़ी दलील ये है कि आदमी जिस मजलिस में हुजूर का तज़किरा होगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बातें पढ़ी या सुनी जा रही होगी, उस मजलिस में आदमी बैठेगा, ये आपसे मोहब्बत की अलामत, और आपकी बातों में से अच्छी अच्छी बातें ले लेगा, अमल करेगा। फजाइल के हल्के जमाना, अपने घर वालों को वक्त दे 1/2 घंटा कम से कम रोजाना, और उनको लेकर बैठे एक साजगार माहौल में घर में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक बातों को पढ़े, ताकि बच्चों और बच्चियों के दिल में दुनिया की मोहब्बत के बजाय आखिरत की रग़बत आवे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत बच्चों बच्चियों के दिल में पैदा हो। यही हमारी असास है। अगर हम चाहते हैं इन बच्चों की दुनिया आखिरत अच्छी हो जाए तो उनके दिलों में अल्लाह रसूल की मोहब्बत दाखिल कर दे, लड़कों के दिलों में, लड़कियों के दिलों में, उनमें हया आवे, उनमें तकवा आवे, उनमें फिक्र आखिरत आवे, उनके दिलों में अल्लाह का डर आवे, हुजूर अलैहिस्सलाम और अहले बैत की मोहब्बत इनके दिलों में आवे। ये हमारे जिम्मे, घर में अपने बच्चों बच्चियों को लेकर बैठे, उनके दिलों में दीन के इल्म की आजमत बिठावे, उनके दिलों में जहां जहां ये दावत का काम चला और वहां के लोगों ने आजमत से फजाइल के हल्कों में बैठे तो उन दुनियादारों के घरों में उलमा पैदा हो, बड़े बड़े करोड़पतियों के घर में आलिम पैदा हुए, बड़े बड़े लेक्चरर और प्रोफेसर और बड़े बड़े दुनियावी ओहदे और डिग्री वालों के घर में उलमा पैदा हुए कि उन्होंने अपने बच्चों को फजाइल सुनाए, इल्म के कुरान के फजाइल सुनाए। और अगर ये नहीं हुआ, अगर ये न हुआ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अहले इल्म के घर में दुनियादार पैदा हो, जाहिल पैदा होंगे एक नंबर। वो अपने बाप के इल्म पर एतराज करेंगे कि उन्होंने गलत किया आलिम बनकर, अपने बाप के इल्म पर एतराज करेंगे, वो अपने बाप की सुन्नत वाली जिंदगी पर एतराज करेंगे। ऐसे ही नहीं हुआ है दुनिया के मुल्कों में बड़े बड़े दीनदार और बड़े 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 उस जमाने के उलमा के घरों में तहरीर पैदा हो, उस माहौल ने उनको खराब कर दिया, उनके घरानों में इलम था, उनके घरानों में इलम था, लेकिन उनके ऊपर एक मेहनत हुई, उन बच्चों पर बाहर से ऐसी मेहनत उन पर हुई जो खुद ही अपने माँ बाप अजदाद के इल्म के दुश्मन बन गए, वो अपने आबा व अजदाद के दीन के दुश्मन बन गए, वो अपने मजहब पर एतराज करने लगे। जिनके घराने में से, जिनके खानदान से दुनिया को हिदायत का नूर मिला था, ऐसे नस्लों में, ऐसे खानदानों में ऐसे अफराद पैदा हो गए जो अपने दीन पर, अपने बाप दादा के इल्म पर नफ्द करने वाले बने, अपने बच्चों के दिलों में इल्म इलाही की आज़मत बिठा दी। उसका रास्ता घर में फजाइल कुरान की तालीम है, सहाबा की जिंदगी की तालीम है, बच्चों के दिलों में, बच्चियों के दिलों में, इनके दिलों में इतनी रग़बत पैदा हो, इतनी रग़बत पैदा हो कि ये अल्लाह के कुरान के और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इल्म के लिए सारी दुनिया को कुर्बान कर दे। जरूर ठीक है, जरूरत के बकदर असली तालीम अगर दे रहे हैं, कोई हर्ज की चीज नहीं है, लेकिन ये ना हो, ये बड़ी बड़ी खुसरान की बात है और हमारे लिए बड़ी तबाही की बात है कि दीनी तालीम और दुनियावी तालीम का तकाबुल हो और उसमें हमारे बच्चे और बच्चियां दुनियावी तालीम को तरजीह दे रहे हो दीन की तालीम पर। ये बड़ी घाटे की बात है, ये नुकसान की बात है। दीन की तालीम के साथ, दीन के इल्म के साथ, दीन और सुन्नत की हिफाजत के साथ अगर हमारा बच्चा असली तालीम दे रहा है तो ठीक है, वरना अगर दीन बर्बाद करके ले रहा है तो ऐसी तालीम 10 मरतबा कुर्बान है, 10 मरतबा इसको कुर्बान किया जाए। अपनी बच्चियों को सहाबा की मुबारक जिंदगी सिखावे, सहाबियात, अजवाज मुतहरात और बनाते तैयबात के बच्चियों को सीखने की चीजें क्या है, उनके सब्जेक्ट क्या है। हम पहले फैसला तो करें कि इनका सब्जेक्ट क्या है, कौन सा सब्जेक्ट इनको पढ़ाना, इनका सब्जेक्ट क्या है। बच्ची का सब्जेक्ट ईमान है, उसका सब्जेक्ट हया है, उसका सब्जेक्ट तकवा है, उसका सब्जेक्ट मुजाहदा है, उसका सब्जेक्ट इफ्फत और पाकदामनी है, उसका सब्जेक्ट अल्लाह का डर और हुजूर की मोहब्बत है, और फिर आखिरी दर्जे में जो उसकी जरूरत का सब्जेक्ट है उसका होम साइंस है कि घर कैसे चलाना, खाना कैसे पकाना, बच्चे कैसे संभालना, शोहर को कैसे टैकल करना, अपने सास और पुसर के साथ कैसे बर्ताव करना, आने वाले मेहमानों को कैसे मैनेज करना, अपने पड़ोसियों के साथ कैसे रहना, ये एक लड़की के सब्जेक्ट है जो उसको पढ़ाएगा। वो साइंस पढ़ के क्या करेगी, लैब में बैठकर पकाना चेक करेगी वो, और एयर होस्टेस बनकर वो 300 पैसेंजरों का लुकमा बनेगी। जिस औरत को अल्लाह ने अपनी रोजी रोटी के मामले में आजाद कर रखा है कि इसके नफके का जिम्मा इसके जिम्मे नहीं है, इसकी रोजी उसके बाप के जिम्मे है, इसकी रोजी रोटी इसके शोहर के जिम्मे है, इसकी रोजी रोटी उसका भाई, अगर उसका बाप नहीं है तो उसका भाई इसकी रोजी रोटी का जिम्मेदार है, उसके जिम्मे वाजिब अपने बहन के कफालत करेगा। वो जिसका खुद की रोजी उसके जिम्मे नहीं है, क्या उसके सब्जेक्ट ये है कि वो दुनिया में किसी जगह नौकरी करेगी, कैसे घर आबाद होंगे, कौन सी अकलमंदी की चीज है ये घर आबाद नहीं हो सकते जहां दोनों पढ़े लिखे हैं। हाँ, दीन पढ़े लिखे हैं दोनों, वो घर आबाद हो जाएगा, जहां दीन पढ़े लिखे हैं वो घर आबाद हो जाएगा। जिस तहजीब पर अहले यूरोप फूक रहे हैं आज हम उस तहजीब को चाट रहे हैं, वो लोग बेजार हो चुके हैं, 12-12 साल हो गए उनकी औरतों ने बच्चा नहीं जना, आज वो उसके लिए स्कीमें निकाल रहे हैं कि हमारी औरत एक बच्चा दे दे, उनकी हुकूमतें इनाम दे रही है कि कोई औरत एक बच्चा जन्म कर देगी तो हम उसको इतना इनाम देंगे। ये वो तहजीब है जिस रुख पर हम जा रहे हैं। अपनी बच्चियों को कुरान पढ़ावे, उनको हदीस का इलम पढ़ावे, उनको तकवा और तहारत पढ़ाना है। ये घर की तालीम से जज्बात बनेंगे कि अल्लाह का डर, तकवे की जिंदगी, हया की जिंदगी, इज्जत और पाक दामनी, कि हमारी बच्चियों का वो जज्बा हो कि मेरा चेहरा मेरे शौहर के अलावा और कोई नहीं देखेगा। ہماری بچیوں کے یہ جذبات اپنے گھر کی تعلیم میں بن رہے ہو کہ میرے جسم کا کوئی عضو میرے شوہر کے علاوہ دنیا میں کوئی نہیں دیکھ سکتا. ایک زمانہ اس ملک میں تھا, حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی بیٹی بڑی عالمہ فاضلہ بڑی شاعرہ تھی. ایران کے کسی شاعر نے ایک مصرع کہا اور پھر اس نے چیلنج کیا کہ اس کا دوسرا مصرع کوئی بناوے. پورے ایران کے سارے شعرا بیزار ہو گئے, کوئی نہیں بنا سکا. تو شاعر ایران نے وہ مصرع ہندوستان بھیجا کہ اس کا دوسرا مصرع لگاؤ. ہندوستان میں بھیجا, ہندوستان کے شعرا نے طاقت لگائی, نہیں بنا سکے. حضرت اورنگزیب عالمگیر کی وہ بیٹی جو پردہ نشین اپنے گھر میں, اس نے جب وہ مصرع پڑھا در ابلغ کسے کم دیدہ موجود, تو برجستہ کہنے لگی مگر اشک بتا نے سرما آلود, یعنی دوسرے لمحے میں اس کا دوسرا مصرع بنا دیا. ایسی بڑی فاضلہ اور شاعرہ, جب وہ شاہ ایران کے پاس اس کا مصرع پہنچا تو اس نے بہت بڑا پروگرام کیا کہ ہم اس لڑکی کو ہم انعام دیں گے, اور اس کو بلایا وہاں, شاہی فرمان آیا وہاں سے کہ اس کو ایران بھیجا جائے تاکہ ہم اس کا سنمان کریں اور اس کو ہم بہت بڑا ایوارڈ دیں گے. تو اس لڑکی نے یہاں سے دوسرا ایک شعر لکھ کر بھیجا اس کو کہ میں اپنے ذات میں ایسی ہوں جیسے گلاب کی خوشبو اپنے اندر چھپی ہوئی ہوتی ہے. آدمی گلاب کی خوشبو کو محسوس تو کر سکتا ہے لیکن گلاب کی خوشبو کو کوئی دیکھ نہیں سکتا. میرے فن کو تم محسوس تو کر سکتے ہو لیکن میری ذات کو تم دیکھ نہیں سکتے ہو. میں ایک مسلمان عورت ہوں, ایک مسلمان عورت ہوں, بادشاہ کی بیٹی, اور انعام لینے کے لیے نہیں گئی کہ میں حیادار خاتون, کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا. جیسے گلاب کی خوشبو اپنے اندر چھپی ہوئی ہے, اس گلاب کو دیکھ سکتے ہو لیکن اس کی خوشبو کسی کو نظر نہیں آتی, ایسے میں میرے فن میں چھپی ہوئی ہوں. میرا فن تم دیکھ سکتے ہو, اگر اور کہو تو اور شعر لکھ کر بھیج سکتی ہوں لیکن میری ذات تو تم نہیں دیکھ سکتے. ایسی حیا اور ایسا تقویٰ پیدا کرنے کی ضرورت ہے, جس کے لیے گھر کی تعلیم ہے کہ ان کے اندر یہ تقویٰ پیدا ہو, ان کے اندر حیا. وہ لڑکی خود کہے کہ میں اس ماحول میں کیوں جاؤں جہاں 50 لڑکے بھیڑیے کی نظر سے مجھے دیکھ رہے ہیں. ایک مسلمان عورت خود کہے, وہ بچی اپنے باپ کو کہے کہ میں ایسی تعلیم نہیں لے سکتی. اسکول میں لڑکے لڑکیوں کو ساتھ تو پڑھایا جاتا ہے, یہ تو مسلمانوں کی بنیادی تعلیم تھی جو گھر میں سکھائی جاتی تھی حیا, کہ 10 سال کی لڑکی جیسے 8-9 سال میں مراہقہ ہوتی تھی وہ اپنے آپ کو اپنے گھر میں رکھتی. یہ حیا ہماری بنیادی چیز ہے. گھر کے ماحول میں, گھر کی تعلیم میں اگر یہ حیا پیدا نہ ہوئی تو پھر اس معاشرے کا کوئی بندھن باقی نہیں رہے گا. اس لیے کوشش کریں گھر گھر میں تعلیم ہو. حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ, حضرت رقیہ, حضرت ام کلثوم اور ازواج مطہرات اور بنات طیبات اور صحابہ کی مبارک عورتیں, ان کی شجاعت و دلیری میں, ان کے تقوی اور ان کے زہد میں, ان کی عبادت اور ان کے انفاق فی سبیل اللہ میں, اور ان کے زہد و جہد میں, اور ان کی پرہیزگاری میں, ہماری بیٹیوں کے لیے, ہماری بہوؤں کے لیے اور ہماری بہنوں کے لیے مثال بن رہی ہو. ہماری بچیاں یہ بات کہنے پر فخر کر رہی ہو کہ میں تو حضرت فاطمہ بننا چاہتی ہوں, میں تو حضرت رقیہ بننا چاہتی ہوں, میں تو حضرت صفیہ اور حفصہ بننا چاہتی ہوں, اور ہماری بڑی عمر کی عورتیں یہ کہنے پر فخر کر رہی ہو کہ میں تو حضرت خدیجہ بننا چاہتی ہوں. ہم ان کی زندگی گزاریں گے. اس کے لیے حضرت شیخ کے پاس حضرت علیہ صاحب نے ان کی زندگی کو لکھوایا اور حکایت صحابہ کو مرتب کروایا ہے کہ مسلمان کے گھر گھر میں اس کو پڑھا جائے تاکہ یہ جذبات عورتوں کے بن رہے. اس کے لیے کوشش کریں گھروں میں تعلیم ہو, محلوں میں اس کی فضا بنے. اس کے لیے عمومی گشت ہیں, عمومی گشت ہفتے میں ایک دن جمع ہو جائے, اپنی پوری طاقت لگا دے اس پر. ہر ہفتے محلے میں ایک دن دو نمازوں کے بیچ کا وقت پاری کر کے اپنی پوری طاقت اس پر صرف کر دیں کہ ہمارے پورے محلے کے ایک ایک فرد کا تعلق مسجد سے جڑ جائے, کوئی بے نمازی نہ رہے. ایمان کی محنت کی نسبت پر ایک ایک کو نماز کے لیے مسجد لانا ہے, پھر مسجد میں نماز کے بعد لے کر بیٹھ کر 6 صفات کی روشنی میں بات کر کے ان کو دین و ایمان کی محنت کے لیے تیار کرنے کا نام گشت ہے. اسی طرح دوسرا گشت پڑوس کے قرب و جوار کے محلوں میں اور قرب و جوار کے دیہاتوں میں جا کر کرنا ہے. वही वीजा बनाने के लिए वहां के वहां भी नमाज जिक्र और तिलावत और इबादत और आमाल की और दावत की वीजा बने और वहां भी हर मुसलमान एक दूसरे का भाई बनकर और मुसलमान एक दूसरे का खैरखा बनकर जिंदगी गुजारने वाला बने। इसके लिए ये मस्जिद की जमात एक दिन अपने मोहल्ले में और एक दूसरा दिन अपना तय करके दूसरे मोहल्ले में जाकर वहां भी ऐसी मेहनत कर ले ताकि उस मोहल्ले में भी कोई बेनमाजी न रहे, कोई बेदी न रहे, कोई घर ऐसा ना हो कि जहां कोई खातून भी बेनमाजी, बच्चों बच्चों में दीन जिंदा हो, वही जिक्र वहां भी करे जो अपने मोहल्ले में कर रहे हैं। और फिर 27 दिन अपने इन कामों के साथ जो हलाल मशगला है उसमें मशगूल होकर हलाल कमाई करे, अपनी कमाई के लाइन के मसाइल उलमा से पूछें कि दुकान के क्या मसाइल हैं, तिजारत के क्या मसाइल हैं, खेती बाड़ी के क्या मसाइल हैं और दीगर जितने किस्म के नए पुराने कारोबार हैं उनके मसाइल उलमा से पूछकर अपनी हलाल कमाई में लगे, हराम ना कमा, हराम की तरफ भी न जाए और अपने इन अमाल को करें। और फिर 27 दिन में अपने नए नए दोस्तों और साथियों पर मेहनत करके उनको तैयार करें और 3 दिन एक नूरानी माहौल में जहां 5 वक्त की नमाज बाजमात है, मस्जिद का माहौल है, सुबह शाम तालीम है, सुबह शाम अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह के सामने रोना धोना है, अल्लाह के बंदों की खुशामद या गश्तों के जरिए से हर महीने 3 दिन एक माहौल में गुजरेंगे तो हमारे अंदर में एक कैफियत बनी रहेगी, अंदर की गफलत कटेगी, जहालत खत्म होगी, हिदायत का नूर आएगा, हम अपने लिए भी और उम्मत के लिए खैर और हिदायत का जरिया बन जाएंगे। इसके लिए फिर हर महीने अपना एक हफ्ता तय करके अपना एक हफ्ता मुतय्यन कर ले, पहला दूसरा तीसरा चौथा 4 हफ्तों का महीना होता है, वो एक हफ्ता अपना तय करके उस हफ्ते पर जम कर कि हर हाल में ये हमारे 3 दिन अल्लाह के नाम पर, ये 3 दिन हमें जमात में लगाने, 27 दिन मेहनत करके 10-12 आदमियों को तैयार करेंगे, फिर उनको भी अपने साथ ले जाकर इन अमाल के जरिए से उन पर भी मेहनत करेंगे, हम अपनी जात पर भी मेहनत करेंगे, उम्मत पर भी मेहनत करेंगे, इस तरतीब से हर महीने फिर 3 दिन लगाने लगाएंगे इंशाल्लाह। कौन कौन लगाएंगे? तीन दिन पाबंदी से लगाने, 1 महीना लगाया, 2 महीने लगाया फिर छोड़ दे, ऐसा ना, अपना हफ्ता देख ले, कुर्बानी इसी में हो, एक मरतबा जाएंगे दोबारा जाएंगे सहबारा जाएंगे, 4th मरतबा में कोई बड़ा मसला आ गया, अब इस वक्त अल्लाह की तरफ मर, अल्लाह तू ही आसान कर, तू ही आसान, अपनी नीयत मजबूत रखेंगे और अल्लाह से दुआ करते रहेंगे तो अल्लाह आसान कर देंगे, फिर 4वें महीने 5वें महीने 1 साल 2 साल अगर इस तरह से एक मुद्दत गुजर गई तो इंशाल्लाह अल्लाह के दास से उम्मीद है मतलूबा दीन पर चलने की अच्छी इस्तेदाद हमारे अंदर बन जाए, फिर बेदीनी से नफरत हो जाए और दीन से मोहब्बत हो जाए, ये दीन का हर हर अमल जो है बहुत ही आसान मालूम होगा और हर अमल पर अपनी जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। इसके लिए सब तय करो इंशाल्लाह कि इन 5 कामों को पाबंदी के साथ करेंगे, भाई करोगे इंशाल्लाह। अच्छा एक काम कर लो, पहले तो पीछे जितने लोग बैठे सब खड़े हो जाओ, पीछे की तरफ जितने बैठे सब खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब खड़े हो जाओ, पीछे वाले जितने सब खड़े हो जाओ, माशाल्लाह खड़े हो जाओ, जल्दी 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 भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ जल्दी से, जितने बैठे हैं लेटे हैं सोए हैं सबको खड़ा करो, पीछे के हिस्से में पिंडाल के पीछे के हिस्से में जितने लोग खड़े हैं बैठे हैं लेटे हैं खड़े हो जाओ भाई, आप लोग भी खड़े हो जाओ, जितने भी हैं पिंडाल के पीछे वाले हिस्से में भाई खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, फिर सेवा जमा दे वहां पर, आप लोग जो जितने खड़े हो चुके हैं वो दूसरों को जो बैठे उनको लेकर आगे आ जाओ, भाई जितने खड़े हो गए हैं वो सब बैठे हुए को लेकर आगे आ जाओ, अल्लाह आपको जज़ा खैर दे, अल्लाह आपका भला करे, बहुत दूर से आए हो इज्तिमा में, अब तो बहुत थोड़ा फासला रह गया है यहाँ तक, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, और आगे आ जाओ और आगे आ जाओ और आगे आ जाओ, मजमे के साथ बिल्कुल मिलकर बैठ जाओ, माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई, और जो रास्ते में है उनको लेकर आओ, रास्ते में जितने सबको लेकर आ जाओ, आ जाओ आ जाओ, माशाल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह आपके आने को कबूल फरमा दे, माशाल्लाह माशाल्लाह, आ जाओ आ जाओ आ जाओ माशाल्लाह, अब एक एक हल्के को खड़ा करें और एक एक हल्के वाले मस्जिद भाई बैठेंगे और ये पांचों काम के लिए अज्म है, अज्म यानी पक्का।